ஓம் சாந்தி. आज का बहुत सुंदर विषय है मायाजीत बनने की विधि. वैसे तो सीजन की बाबा की मुरलियां चल रहे हैं और इस मुरलियों में बाबा विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं. रिवाइज कोर्स चल रहे हैं. जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर पढ़ाता नहीं, लेकिन जो पढ़ाया है उसको रिवाइज किया जाता है और वही रिवाइज होता है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर को पता है बच्चों के लेसन कौन से कच्चे हैं और कौन से लेसन के क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं. इसीलिए दोबारा फिर वही मुरलियों को रिवाइज किया जा रहा है. तो हमें उस मुरलियों के ऊपर अच्छी तरह ध्यान रखना है और मायाजीत बनना है. और वैसे अभी मिलन भी चल रहे हैं, अव्यक्त मिलन. हम स्वयं को भी अव्यक्त बनना है. बाबा तो अव्यक्त है, पहले बाबा साकार में आकर के अव्यक्त मिलन मनाते थे, लेकिन अब बाबा कहते हैं मैं तो जहां है वहां हूं, लेकिन आप अव्यक्त बनकर के कहां क्या रहो वहां आओ. बाबा का हमारे साथ इतना दिन प्यार था, प्यार ही तो था. जो प्यार है वो असंभव बात को क्या करता है, संभव. तो बाबा ने इतना दिन अपना प्यार दिखाया, अभी हमारा कितना प्यार है कैसा पता चले. हम जब वहां जाकर के उनसे मिलेंगे तो अव्यक्त मिलन चल रहे हैं. और उसमें भी अभी नया साल चालू होने वाला है 2020. वैसे जो 2020 का मैच भी बहुत मशहूर हो गया था. तीन प्रकार के मैच होते हैं. एक होता है टेस्ट मैच, दूसरा होता है वनडे मैच और तीसरा होता है 2020. तो अब 2020 आने वाला है, सभी अपने बैट को मजबूत करना. एक्चुअली इंडिया का सबसे फेमस खेल कौन सा है, क्रिकेट. वास्तव में संगम युग का ये सब बातें हैं. जैसे उस क्रिकेट में तो कोई जानता नहीं क्रिकेट के बारे में, लेकिन ज्ञान का क्रिकेट तो बाबा ने सिखाया. क्रिकेट में तीन स्टंप होते हैं, तीन स्टंप, उसके ऊपर दो गुल्ली होती है. बॉलर क्या करता है, बॉल मारता है. अगर उसमें से तीनों में से कोई भी हिल गए तो दो गुल्ली अलग अलग हो गई तो खेलने वाला क्या हो गया, आउट हो गया. इतना ही नहीं, उसके बॉडी को भी टच हो गया तो भी आउट हो गया. और चारों तरफ से बॉल पकड़ने वाले भी होते हैं, अगर वो बॉल का कैच भी किया तो भी आउट हो गया. बॉल मारने वाला एक होता है, पकड़ने वाले भी होते हैं, खेलने वाला एक ही होता है उसके पास. और अपनी रक्षा करने के लिए वो हाथ को मजबूत रखता है, सिर को मजबूत करता है. तो वास्तव में मनसा वाचा कर्मना ये हमारे तीन स्तंभ हैं. और इस तीन स्तंभ को जितना एकाग्र रखेंगे उतना आत्मा और परमात्मा से ये मंगल मिलन होता रहता है, दोनों स्थिर है. अगर दोनों में से कोई जो बॉल आता है वो बातें आते हैं माया की तरफ से, एक इन तीनों में से किसी को भी टच हुआ, इसमें प्रभावित हो गए उन बातों से, तो आत्मा परमात्मा का मिलन खत्म, अलग हो गए फिर. इसीलिए हमें ये तीन बातें मनसा वाचा और कर्मना तीनों को स्थिर रखना है, तब हम मंगल मिलन मना सकते बाबा के साथ. अन्यथा तीनों में हलचल होगी तो आउट हो जाएंगे. इतना ही नहीं, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का बॉडी कॉन्शियस भी ना हो. तो इसलिए इस 2020 में समय आपने इतना दिन जो नहीं किया इस 2020 में करना है, उसमें टाइम कम होता है, टाइम कम और उसमें विजय बनना है। तो एक एक दिन में 365 दिन खेलने का चांस मिलेगा, तो इस 365 दिन को, एक एक दिन को ऐसा सफल करना है कोई भी दिन में माया का वार हमारे अंदर न हो जाए। और इतना दिन आप अगर हार गए, कुछ भी हो गए, तो भी आपको विजय कहेंगे फिर। इसीलिए इस 2020, क्योंकि उसके बाद पता नहीं खेलने का मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि समय अलग हो गया, हो जाएगा, अलग समय चलेगा। इसलिए इस 2020 में हमें अच्छी तरह क्या करना है, तैयारी करना है। अभी भी है कुछ दिन बाकी है, पहले से प्लान करो कि इस आज तक के खेल में मैं क्यों फेल होता था, कारण क्या थे और कौन सी बातों में फेल होता था। अब ये दोबारा हमें इस 2020 में उसको दोहरा करके फेल नहीं होना है, अच्छी तरह मैच जीतना है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ऊंचा है। नहीं तो फिर हार जाएंगे तो फिर पद कम मिलेगा फिर। इसलिए इस 2020 मैच को अच्छी तरह क्या करना है, जीतना है, माया जीत बनना है, क्योंकि माया के वश होने वाला, जो माया के संस्कार के जो भी कमजोरियां हमारे अंदर है उसके वश होने से हमारी खुशी नहीं होगी, फिर कर्म योगी नहीं बन सकते। की कमाई हमारी चट हो जाती है, वही मंडल खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, ना हम सोमान में रह सकते हैं, ना सोधर्म में टिक सकते हैं। जब हार जाता है तो वो खिलाड़ी की क्या हालत होती, एकदम निर्वस हो जाता है। और हमारी एक की हार मतलब तो बाबा को भी कैसा लगे, बाप मैंने कितना इसको पढ़ाया, क्या किया, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए माया के वश होने से जो कमाई किया है वो भी कर्म, पद भी कम मिलेगा। माया के वश होने से ना स्वधर्म में टिक सकते हैं, ना स्वमान में रह सकते हैं, ना आत्मिक स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें इसमें हारना नहीं। तो कई कई माया जीत बनने के लिए क्या करते हैं, माया जीत बनना अर्थात केवल बीजी नहीं रहना, माया जीत बनने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योग तपस्या। तो बाकी सेवा, ऐसे नहीं कि सेवा करनी नहीं, सेवा भी है, लेकिन सेवा केवल सेवा के ऊपर नहीं। तो कई समस्या आज तो सेवा की बहुत अच्छा खुशी हो गई, सेवा तो हमें योग को अच्छा बनाने का साधन है, लेकिन योग के द्वारा ही जितना हमारे पास योग बल होगा, योग से स्थिति बनेगी। तो जो जो बाबा ने हमें योग के लिए टाइम मुकरर किए उसी समय हमें योग जरूर करना है, और जब हम योग करेंगे तब माया चित बन सकते। जैसे आज की भी बाबा की मुरली थी, माया के मार से बचने के लिए अशरीरी स्थिति को बनाओ, अशरीरी। और वो अशरीरी स्थिति बनेगी कैसे, योग से बनेगी। जितना योग के तरफ हमारा अटेंशन होगा उतना हम माया जीत बन सकते हैं, क्योंकि योग से हमें सच्चा सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है। ये सुख जिसको मिलता है वो माया के वश नहीं होगा, माया जीत बनेगा। अगर योग बल कम है तो वो संस्कार अंदर से जागृत होते हैं, लेकिन वो योग भी हमारा कैसा चाहिए, यथार्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि निमिना तो वो करके बैठ गए, बैठ करके कहीं तो अमृत वाले उठेंगे, उठ करके बैठेंगे, आंखें बंद है मुंह खुला है ऐसे बैठे, दीवार के सहारे। अब सोचेंगे हाँ योग किया किया, लेकिन वो योग से हमारी अशरीरी स्थिति कैसी बनेगी? बेड पर से उठे, चाहे बाबा के कमरे में बैठे या कहीं भी बैठे या फोटो के सामने बैठे, लेकिन वो बैठे स्थिति कैसी थी उस समय? तो बैठ करके दीवार के सारे मुंह खुला है, आंखें बंद है, ऐसा नहीं, कहीं तो नींद करेंगे। तो इस 2020 में हमें योग में अलर्ट होकर के बैठना है, एक्टिव होकर के बैठना है, बाबा से बातें करते। केवल ऐसा भी नहीं, योग में बैठ गए बाबा के चित्र को देखते हुए बैठे हैं बस। अगर कोई मेहमान घर में आया, मेहमान सामने है, आपने उसको बुलाया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे भी क्यों बुलाया, क्यों, तो भी देख रहे बस। इसीलिए बाबा से गहरी बातें करना, बाबा के उपकारों को याद करना, बाबा ने हमें जो प्राप्तियां कराई उसको याद करना, बाबा ने हमें जो क्या से क्या बनाया है उसको याद करना। और जितना अलर्ट होकर के योग तपस्या करते हैं, खास तो अमृत वाला की, उससे हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी अमृत वेला आत्मिक स्थिति बनेगी, ब्रह्मकुटी में आत्मा का दीपक जग जाएगा, उसको फिर सारा दिन देखते हुए भी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, वो किसी के तरफ प्रभावित नहीं होगा, ना कोई वस्तु के तरफ प्रभावित, ना कोई विकार उनके तरफ प्रभावित, मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहेगा। और वो सारा दिन उसकी जीत होगी, किसकी, जिसकी आत्मिक स्थिति है। अब ये आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है अमृत वेला का योग। जैसे ट्रेन का इंजन जब स्टेशन से चलता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार स्टेशन से चल पड़ा तो केवल उसको पटरी पर रखने का ध्यान रखते हैं, फिर बाद में कोई मेहनत नहीं लगती। इसी तरह अमृत वाला थोड़ी मेहनत किया तो सारा दिन आपका पुरुषार्थ रूपी ट्रेन केवल श्रीमत और मर्यादा के पटरी पर रखने की जरूरत है, तीव्र चलेगी। इस वर्ष के अमृत वेले के ऊपर हमें थोड़ा सा अटेंशन देना है। केवल उठ करके नहीं बैठना, लेकिन अंदर से गहरी बाबा के साथ बातें करना। जब भी कभी, लेकिन ये भी नहीं करना, कई तो क्या करते हैं, नींद खुल गई 2-2.5 बजे उठ जाएंगे, उठ करके योग करेंगे, फिर नींद आएगी, फिर सो जाएंगे, फिर सारा दिन कहीं तो 2-2.5 बजे बैठेंगे, उठेंगे, फिर सारा दिन चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि शरीर के लिए भी हर एक को नींद का स्टॉक रहता है, नींद की बॉडी को कितना जरूरत है उतना नींद करना है। और वैसे तो बाबा ने जनरली में हमें टाइम क्या दिया है, 4:45 तक, उस समय हमें फ्रेश होकर के बैठना है। इस तरह से अमृत, अगर कभी कभी बाई चांस कभी मिस भी होती है, बाई चांस वैसे तो मिस नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी हमें डरना नहीं है, कहीं क्या करते हो, अरे मेरी अमृत वाला मिस हो जाएगी, आज तो माया आएगी, माया आएगी मतलब माया को अपने बुला दिया, आ जाओ, आज मेरे अमृत वाला मिस होगी, फिर सारा दिन डरेंगे, जहां डरता है वहां भूत प्रवेश होता है। इसलिए उसके अगर हो भी गई, उसके बाद सारा दिन कोशिश करके आपको और काम को समेट करके ज्यादा योग में रहने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर सारा दिन स्थिति अच्छी रहेगी। एक तो अमृत वाला मिस हो गई, फिर घबराएंगे, फिर सारा दिन योग भी नहीं करेंगे तो फिर और ही प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए अमृत वेले का योग यथार्थ करना है। अमृत वाला तो क्या, जो जो बाबा ने हमको टाइम दिए हैं उस टाइम को हमें योग यथार्थ करना है। क्लास के पहले भी आकर के क्लास में, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ सेंटर पर जब जाता हूँ तो कई क्लास के भाई बहने क्या करते हैं, 6:30 बजे योग चलता है तो योग के समय लाल लाइट चल रहे हैं, फिर 6:30 बजे एक आया, 7:45 बजे दूसरा आया, फिर तीसरा आया, 7 बजे सफेद लाइट होने से पहले काफी क्लास भर जाती है। जबकि क्लास भरनी चाहिए कब, 6:30 बजे भरनी चाहिए, लेकिन कब भरती है, मानो कई समझते तो योग तो जरूरी नहीं है, बस मुरली सुन के जाना है। फिर शाम को उनको पूछे कि आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था वरदान बचाओ, बहुत अच्छा था, उसका चिंतन मंथन भी नहीं चलेगा, वो मुरली सारा दिन दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की तरह ये प्रवचन नहीं है। इस मुरली को समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता के लिए योग पहले बाबा ने सिस्टम बनाकर दिया है। मधुबन में भी सारे सेंटर में भी सिस्टम है, आधा घंटा पहले योग चलता है और उसके बाद फिर मुरली चलते हैं। लेकिन हम अपना कोई बहाना बता करके, थोड़ा घर सेंटर से दूर है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करके, ठंडी बहुत है करके हम क्या करते हैं, लेट आते हैं। अगर वो समय योग नहीं करेंगे जो हमें स्थिति बननी चाहिए, शरीर की नहीं बनेगी। इसलिए आधा घंटा योग करके और मुरली भी सुननी है, संगठन में सुननी है, एकाग्र होकर के सुननी है। चाहे तो उसको डायरी में आप नोट भी कर सकते तो अच्छा है, जो जो बाबा की मुरली चलती है। और ये तीन चीजें तो करता है सवेरे सवेरे, उसकी अशरीरी स्थिति बनती है। और जो अशरीरी सवेरे जिसने बनाई स्थिति, वो सारा दिन, जैसे जिस घर में या लाइट होते हैं वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है, आत्मा अभिमानी स्थिति है, वहां फिर माया नहीं आएगी, सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और वैसे ही तो उस वर्ष का पहला महीना हमारा जनवरी महीना है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त का महीना है, और ये पहला महीना पूरा साल का फाउंडेशन है। तो इस पहले महीने को ही हम अच्छी तरह अव्यक्त स्थिति में रह करके एक एक दिन बिताने का पुरुषार्थ करना है। तो जिन्होंने ये महीने को अच्छी तरह सफल किया, अव्यक्त स्थिति बनाई पूरा, फिर बाकी महीने को भी हमें चेक करना है। और ऐसे ही 2020 को अच्छी तरह में अपनी स्थिति को बनाने का प्लानिंग बनाना है, पुरुषार्थ करना है, और उसमें अच्छी तरह कम समय में जीत प्राप्त करनी है, उसमें पराजय नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें पुरुषार्थ का, क्योंकि दुनिया का वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, उस समय हमें ऐसा जो पुरुषार्थ करना, समस्या और आती रहेंगी, वातावरण भी बिगड़ता जाएगा, समस्या भी आती रहेंगी, तो अभी हमारे पास फिर भी समय है। चलो तो बात चल रही थी इस वर्ष में हमें मायाजीत बनने के लिए विशेष, और सबसे पहले तो चेक करना है हमारे अंदर माया किस रूप में है, क्योंकि माया के अलग अलग प्रकार के कभी संपर्क के रूप से भी हमें आएगी, कभी काम विकार के तरफ से भी आएगी। जैसे बॉल अलग अलग प्रकार के आते हैं, अगर बैट मजबूत है, ज्ञान के पॉइंट्स हमारे पास आता है, तो उसको हम सहज उड़ा सकते हैं, सहज उसको आउट कर सकते हैं। एक तो ज्ञान के पॉइंट हमारे पास सॉलिड चाहिए, और साथ में योग तपस्या चाहिए। इस दोनों के तरफ से केवल अगर बैट मजबूत है, ज्ञान है, लेकिन योग तपस्या नहीं, तो भी हम जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो योग का भी बैलेंस रखना है और साथ में ज्ञान के भी, लेकिन ज्ञान के हमारे पास जिस प्रकार की बातें आती हैं, अगर संबंध संपर्क से तरफ से आती है, कोई बात नहीं, मेरा पिछले जन्म का इनके साथ कोई हिसाब होगा, वो हिसाब चुप्त हो रहे हैं। ये तो हम क्यों क्या में चले जाते हैं, अरे मैंने इसके रास्ते में कभी गया नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो पराजय हो जाएंगे। हमारे पास तो एक तो टाइम कम है, अब अगर सोचेंगे ये बॉल क्यों मार रहे हैं मेरे तरफ, तब 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 आउट हो जाएंगे। इसलिए जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, उस आधार से हमें क्या करना है, संबंध संपर्क में आते हैं तो उस प्रकार के पॉइंट दिमाग में लाऊं। अगर कोई काम विकार के तरफ से आता है तो वही मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र देश की निवासी हूं, पवित्रता का सागर मेरा बाबा है, तो ऐसे ही पॉइंट से जैसी बीमारी होगी वैसी दवाई खाई जाती। किसी का सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई खाई जाती है, पेट दर्द है, पेट दर्द की दवाई खा जाती है। इसी तरह जैसे आजकल बाबा ने हमें सोमान के बारे में मुरली चलाई, सोमान, तो सोमान भी हमें कौन से यूज करनी है, जैसी बीमारी है वैसे सोमान, सोमान भी एक प्रकार की टेबलेट्स है जिसे हमारे अंदर वो पावर आती है, मायाजीत बनने की पावर आती है। नहीं तो विकार कोई और है और सोमान कोई और होंगे, उसको फिर ताकत नहीं आएगी उसे। बीमारी पेट दर्द है और सिर दर्द के टेबलेट खा ली, उसे नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सोमान भी कौन से लेने हैं वो भी युक्ति चाहिए, कौन से पॉइंट किस समय यूज करना है वो टेक्ट चाहिए, तब हम उसमें विजय बन सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने जो अनेक प्रकार की अव्यक्त मुरलियां चलाई, इस वर्ष में हमें जीत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो बाबा की मुरलियां चली है उसकी हमें बीच बीच में स्टडी करनी है, हमारे अंदर कौन सी कमजोरी रही है, कौन से प्रकार के विकार मुझे तंग कर रहे हैं, उसी टॉपिक को निकाल करके। मुझे लगता है अव्यक्त वाणियों की किताबें मिलती हैं लिटरेचर में, 15-20 कुछ कीमत होगी उसकी, कोई ज्यादा कीमत भी नहीं, और वो ये डायरेक्ट भगवान वाच्य बाबा की डायरेक्ट मुरली है। बाबा के मुरलियों के महावाक्यों को याद करके वैसे चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। हम कहीं क्या करते, कोई क्लासेस की कोई उतना ताकत नहीं मिलेंगी, लेकिन बाबा के मुरलियों वाली ताकत ज्यादा है, क्योंकि इतना दिन हमें शास्त्रों की बातें, ग्रंथों की बातें पढ़ करके माया जी थोड़ी बने, उसे नीचे गिरते गए। आजकल कई क्या करते हैं, व्हाट्सएप में कितना सारा मटेरियल आता है, वो व्हाट्सएप के फेसबुक के मटेरियल से मायाजीत नहीं बनेंगे। इसीलिए आजकल कई भाई बहने गुमराह हो रहे हैं, कहां से कहां कहां क्या कितना सारा, और फिर आता है तो अपने दोस्त के पास तुरंत फॉरवर्ड करेंगे, आया फॉरवर्ड, खुद पढ़ेंगे भी नहीं, तो दो चार लाइन पढ़ ली फॉरवर्ड कर दिया। तो असली मुरली जो हम सुनते हैं वो तो बाजी में रह गई, लेकिन इधर उधर की कई चटपटी बातें भी आजकल कई कहते ज्ञान है ना बड़ी अच्छी पॉइंट्स हैं, कितनी भी अच्छी हो तो उसे इतनी ताकत नहीं मिलेगी, गुमराह हो जाएंगे। तो फिर इतनी पॉइंट बातें पढ़ करके भी और ही पराजय हो जाएंगे। इसीलिए सॉलिड एक दो जो मुरली सवेरे चलती है उसी में से हमें कोई पॉइंट लेकर के सारा दिन चिंतन करना है। ये तो अनेक प्रकार की इधर से उधर से दुनिया के भी कोई भक्ति मार्ग की बातें कई आजकल फेसबुक से कई व्हाट्सएप से आती रहते हैं, तो कई भाई बहन उसी में गुम हो जाते, असली बाबा का बातें बाजू में रह गई, मुरली बाजू में रह गई और फिर पराजय बन जाते। इसलिए मुरलियों के ऊपर अटेंशन। ये तो हमारा एक चित्र है ना, सीढ़ी में एक चित्र है, सीढ़ी में दिखाते हैं लास्ट में एक भिखारी बैठा है, सोया है भिखारी, और उसके सिराने में एक गीता का शास्त्र है और उसके हाथ में कटोरा है और वो क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और वो चित्र किसका बताते हैं, भारत का, भारत का तो उस अनुसार है, लेकिन वास्तव में वो चित्र हमारा ब्राह्मणों का, असली गीता का शास्त्र किसके पास, हमारे पास। वो कहां रखा है सिराने, और कहते बाबा मेरा योगी नहीं लगता, सो इसके पास जाएंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे ये समस्या है, मेरे ये समस्या। मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे लेकिन औरों को पूछते रहे, फिर वो अलग अलग ये दे देते हैं, लेकिन असली हमें इलाज नहीं मिलता। असली सारे प्रश्न के उत्तर मुरलियों में, वो डायरेक्ट बाप भगवान वाच है। इसलिए उस मुरलियों को अनुसार चलना जरूर। बाबा ने हमारे अंदर जो जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मुझे लगता है जो अव्यक्त मुरलियां चली है, काम विकार के बारे में, संबंध संपर्क की माया आते वो इसके बारे में, क्रोध के बारे में, अलग अलग टॉपिक है, और उस टॉपिक को गहराई से पढ़ना। हमारी दादी जानकी जी अभी भी देखो कितनी बार मुरली पढ़ती है। तो हम तो एक बार सुनी ना सुनी, कई तो आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक से ही सुन लेते, बस वो काम पूरा हो गया, लेकिन नहीं, आधा घंटा पहले योग करना फिर सुनना। तो उसे जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी लेते हैं, जो आपकी बीमारी वो दवाई मांगते हैं, ऐसे नहीं आपके पास एक एक सैंपल कोई है, सब दवाई की एक एक सैंपल दो और वो खाएंगे तो क्या हो जाए। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम क्रोध लोभ सारी, क्योंकि सब बच्चे सामने बैठे बाबा के, बाबा हर सभी पेशेंट की दवाई उसमें दे देता है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए बाबा ने क्या पॉइंट्स आज दी, उसको कैच करने के लिए एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता आती है योग के क्लास के पहले योग करने से। माया का कौन सा तीर आ रहा है हमें भी वही लगाना है, तब जीत। माया का कोई और आया, हमने कोई और लगाया, हम पराजय हो जाएंगे। इतना ज्ञान है, योग है, सब कुछ। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है फिर दूसरा काटता है, लेकिन कटता ही नहीं। आखिर विभीषण आकर के उसके कान में एक बात सुनाता है, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, तब रावण मर गया। नाभि अर्थात हमारी कमजोर संस्कार, उसको खत्म करना। नाभि अर्थात हमारे अंदर का देह का भान, और तब हम विजयी बनेंगे। तो पहले तो टाइम वेस्ट हो गया, बाद में पता चला तो एक तीर से रावण मर गया। अगर यही पहले पता होता तो इतना लंबा युद्ध नहीं होता। इसी तरह हमें भी अब लंबा, जितना लंबा युद्ध करेंगे उतना फिर, इसलिए अब हमें प्लानिंग बना रहे कि हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो दोबारा रिपीट ना हो, वो संस्कार ना आए, माया जीत बने। क्योंकि उसमें युद्ध रहने से हमारा बोझ बोझ में रहते हैं, फरिश्ता नहीं बनते, हल्का नहीं बनते, वो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, वही मंडल खराब हो जाता है। इसलिए जो मुरलियां बाबा की चलिए उस अनुसार उसको उसके स्टडी करके उसका पढ़ाई करके हमें उस संस्कार के नॉलेजफुल बनना, उसी टेबलेट को लेना, मुरलियों की ज्यादा ज्यादा स्टडी करना है। दूसरी चीजें आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी को भी सर्जन से नहीं छिपाओ, सच सच बताओ। अगर रोज पुरुषार्थ करते हैं तो भी कुछ होता है आगे पीछे, तो बाबा को सुनो। आप कहेंगे बाबा कैसे सुनेगा? सुनेगा, बाबा सुन लेता है, क्योंकि बाबा अव्यक्त है, आपकी आपके आसपास ही रहता है। आप सुनाओ, बाबा को सुनाएंगे तो उसका इलाज बाबा देगा। जैसे और खास तो अमृत वेले के समय भी, अमृत वेला करने के बाद पहले बाबा से अच्छी तरह मिलन मनाओ और उसके बाद लास्ट में बाबा को सुनाओ कल की सारा दिन की दिनचर्या क्या क्या हुआ। जैसे डॉक्टर जब चक्कर लगाता है वार्ड में तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है और सारी अपनी बीमारी वो पेशेंट को पता होता है कि इतना बजे डॉक्टर इस वार्ड में चक्कर लगाता है तो उठ करके बैठता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसके अंदर सारे पेशेंट्स हैं। संसार में जितने भी लोग हैं, कौन है, किसको काम की, किसको क्रोध की, किसको लोभ की, अलग अलग बीमारी लगी है। और बाबा कौन है, सुप्रीम सर्जन। और इस दुनिया में हॉस्पिटल में चार वार्ड बने, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया में। तो यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम है, बाबा का आने का टाइम है, चक्कर लगाता है कब, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक चक्कर लगाता है, 5 बजे तक। तो उसी समय हमारा पेशेंट का फर्ज है उठ करके बताना। अब पेशेंट उठ करके नींद कर, अब डॉक्टर तो आकर के चला भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठाए, उठ करके डॉक्टर सामने आए और पेशेंट डॉक्टर को देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा। तो डॉक्टर को क्या पता है कि इसको क्या चलेगा, ये हो रहा है। तो इसलिए हमें अपनी बीमारी को सुनाना है। एक भाई ने मुझे जब ये बात बताई उसको, तो कहा कि बाबा तो भगवान है ना, तो बाबा नहीं जानता इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो अपने आप क्यों नहीं बोलता, हमको बताने क्या जरूरत है। समझो डॉक्टर्स होते हैं जो लौकिक वाले, वो डॉक्टर ने बीमारियों के बारे में पूरी स्टडी की है, पूरी स्टडी की है उन्होंने। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर कहता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, देखो और चेक करो। जबकि डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को सुनाना पड़ता है। और जैसा सुनाएगा, अगर पेशेंट झूठ भी बोलेगा मुझे सिर दर्द है, ठीक है लिख देगा दे देंगे, उसको क्या बताएगी सिर दर्द, जो डॉक्टर पेशेंट ने बोला वो देगा। इसी तरह हम बाबा को भी क्या करना है, सुनाना है, बाबा मैंने आपके, जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी कल मैंने आपकी दवाई खाई, वो मैंने कुछ चाय पानी भी नहीं किया, ये नहीं किया, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने किया, लेकिन 2 बार उल्टी हुई, ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ करके फिर लिखता है। और उसकी दवाई फिर ऑफिस में जाकर के किसी कंपाउंडर को, नर्स को, या फिर खुद आकर के देके चला जाता है। इसी तरह अमृत वाला सुनाओ, बाबा मैंने ये किया, अमृत वाला भी उठे, मुरली भी सुनी, फिर भी पता नहीं उस विकार के मुझे बहुत संकल्प चले, मुझे गुस्सा भी आया, मेरे को ऐसा ऐसा जो हुआ है, सच बाबा को सुनाओ, बस सुना कर छोड़ो। उसकी बीमारी की दवाई आपको उसी मुरली, उस दूसरे दिन की मुरली चलेगी उसमें मिलेगी, या फिर कोई ना कोई मधुबन से कोई ना कोई आपके पास आएगा और उसी टॉपिक के पर क्लास चलेगा जो आपके प्रॉब्लम है, कोई ना कोई सेंटर की बहने आपको सुनाएगी, टचिंग के द्वारा वो दवाई मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते छिपाओ नहीं, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसीलिए बाबा को सुनाना रोज, सच सच बाबा को सुनाओ। और बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, तो चुप नहीं रहो। जब डॉक्टर आता है तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आपका थैंक्स, आज बहुत अच्छा है, कुछ ही नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो डॉक्टर लगेगा हाँ वाह मेरा पेशेंट बहुत अच्छा है। तो बाबा को भी कहो, बाबा शुक्रिया, आज बहुत अच्छा हूँ, कोई विकार नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आई, बहुत अच्छा, बहुत सुखदायी। बाबा बोले, हाँ ये आज बहुत अच्छा। तो इसीलिए बाबा को सुनाना, एक तो मुरलियों से स्टडी करना, बाबा को सुनाना, और जिस प्रकार की हमारे अंदर की माया आती है उस प्रकार के भोजन ना देना, उसको भोजन नहीं देना। नहीं तो कई काम विकार भी चल रहे हैं, साथ में कोई मूवी देख रहे, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जा रहे, कोई गीत सुन रहे, वो और ही भोजन दे रहे उसको, उस बीमारी का भोजन मिल रहा है, उससे और ही जागृत हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार की माया है उसका भोजन, अर्थात वो थॉट्स न देना, संकल्प न करना, नहीं तो और ही बढ़ती जाएगी बीमारी। और विशेष श्रीमत और मर्यादा का, वास्तव में हमारे अंदर जो माया आती है वो क्यों आती है, कारण होता है, हम कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे को बच्चे हो, तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह हम भी कुछ ना कुछ नियम मर्यादा को तोड़ देते हैं। जब नियम मर्यादा तोड़ते तब माया बहन आकर के थप्पड़ मारते। इसलिए हमें अपने नियमों में पक्के रहना है। अमृत वेला के लिए पक्के रहना है, मुरली के लिए पक्के रहना है, और जब खान पान के लिए पक्के रहना है। और जितना नियमों में पक्का रहेगा वो कमजोरी हमारे अंदर नहीं आएगी, हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अगर विजय बनना है, एक एक दिन को सफल बनाना है, उसके लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा के ऊपर विशेष ध्यान देना है। एक तो बताया मुरलियों से उस किस प्रकार के हमारे अंदर माया आते हैं, किस प्रकार के हमारे अंदर थॉट चलते हैं, उसके लिए स्टडी करना रोज। और साथ में दूसरा बताया बाबा को सुनाना, साथ में बताया अमृत वेला का योग पावरफुल, और खास तो हमें योग के ऊपर ध्यान, अमृत वेला क्लास के पहले योग और मुरली, तीन बातों के ऊपर ध्यान। और साथ में अगर हमें मायाचित बनना है इस वर्ष में, उसके लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास, सारा दिन विशेष अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास। इसीलिए देखो बाबा की कोई भी साकार मुरलियां चलती हैं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। इस पॉइंट के तरफ बाबा बहुत अटेंशन खिंचवाता है। क्यों? क्योंकि हर प्रकार की माया, कोई भी किसी के अंदर क्रोध आता है, किसी के अंदर दूसरे के बारे में कुछ बातें आती हैं, किसी के दोष दिखते हैं, सारी प्रकार की माया जीतना है उसके लिए कौन सा अभ्यास? आत्माभिमानी का अभ्यास, अशरीरी बनना। ये अशरीरी बनना, क्योंकि बाबा कहते सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह बहान, ये सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति से ही हम माया के मार से बच जाएंगे। वो कोई भी प्रकार की काम के तरफ से आएगी, क्रोध के तरफ से आएगी, वो फेल हो जाएगी। जब सीता के सामने रावण आता है वो क्या करती? माचिस की तिल्ली जला करके रख देते। ये तिल्ली क्या है? आत्माभिमानी स्थिति। हम रावण के राज्य में रहते हैं, तो इसी रावण से बचना है तो हमारी ये तिल्ली सदा जलती रहे, आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे, हमें देह बान आए ही ना, ये है असली पुरुषार्थ। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी देखो क्या किया था, बार बार अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, यशोद आत्मा है, ये आत्मा, आत्मा आत्मा का अभ्यास किया। और इस जब हम आत्मा को खुद को भूल जाते हैं तब जाकर के माया कोई ना कोई तरह से हमें फेल करने की कोशिश करते हैं। संबंध संपर्क की तरफ से आएगी, प्रकृति की तरफ से आएगी, क्रोध दिलाएगी, काम विकार पैदा होगा, कोई ना कोई आएगा। अगर कोई भी प्रकार की माया के ऊपर जीतना है ये अशरीरी का आत्मा का अभ्यास पक्का करना है, और इससे ही हम देवता बनने वाले, इस अभ्यास के द्वारा ही। इस अभ्यास की कमी हमें पराजय दिलाते हैं। तो इस 2020 में और अंतिम पेपर भी आएगा, उसमें भी पास करने के लिए आत्मिक अभ्यास ही काम आएगा। कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति, और ये आत्मिक स्थिति बनाने का आधार क्या है? योग। केवल कई तो क्या करते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं तो सोचते आज मैं मायाजीत बना। सेवा में बिजी रहे इसीलिए मायाजीत नहीं बने, वो तो संस्कार अंदर, वो आपको कोई सेवा से मान शान मिल रहे हैं इसलिए आपके अंदर के संस्कार नहीं जागृत हुए। इसलिए केवल सेवा करने से नहीं मायाजीत बने, इसलिए बाबा कहते हैं योग भी जरूरी है, तपस्या भी जरूरी है। इसलिए हमें साधना करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साधना में हमारे दिनचर्या में ऐड करना है, और साधना करने से ही हमारी वो आत्मिक स्थिति बनती है, और आत्मिक स्थिति के द्वारा ही हम विजय बनेंगे। हमारे अंदर जो कमजोरी है, तो बाबा कहते ना मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे, लेकिन आज आई नहीं, वो चले गए, कहां गए? माया के से हार गए। क्यों? योग की कमी थी। योग की कमी के कारण कभी अभिमान आएगा, योग की कमी के कारण के आपस में टकराव होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो फेल हो जाएंगे। यहां की कभी कभी किसी की कमजोरी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए योग में रहने वाला हर माया के हर थप्पड़ से बच सकता है, हर मार से बच सकता है। इसीलिए अशरीरी का अभ्यास, और एक्चुअली मायाजीत बनने का साधन है आप अपने किले को मजबूत करो। कौन सा किला? माया आने का साधन और कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, उसको माया को प्रवेश देने का साधन है ये हमारी कर्मेंद्रिया। कान के द्वारा आती है, आंखों के द्वारा आते है, मुख्य आपके घर के ही आपको धोखा दे रहे, पता ही नहीं चल रहा, घर का ही धोखा दे रहा है। कहां से आते? कान के द्वारा ही वेरत सुना। इसीलिए इस किले को इस वर्ष में मजबूत करना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने और क्या पुरुषार्थ किया था, बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया। इसी तरह हमें भी अपना रोज क्या लगाना है? दरबार लगाना है। कान ने आज सारा दिन क्या सुना, आंखों ने सारा दिन क्या देखा, मुख ने क्या बोला, मन ने क्या क्या सोचा, बुद्धि ने क्या क्या निर्णय किया। क्योंकि कोई भी बातों को निर्णय कौन देती है? बुद्धि। तो इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना। लेकिन हम कभी चेक कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर भाजी टकेशर खाजा, इस नगरी का राजा सोया है, उसमें जो चाहे हो रहे हैं, और दोष दूसरों को देते हैं। दूसरे ने ही नहीं किया, लेकिन किया हमारे अंदर। इसलिए हर कर्मेंद्रिय काम में क्या करना है, रोज दरबार लगाना है और उसकी चेकिंग करनी है। काम भी आया, कहां से आया? आंखों ने कुछ ना कुछ किसी को गलत देख के भान में देख लिया, उसके बाद मन ने उसके बारे में सोच लिया, फिर बाद में धीरे धीरे बुद्धि के ऊपर सभी सहयोगी बने, और इसलिए आत्मा पराजय हो गई। तो आत्मा को पराजय कराने वाली कौन है? इंद्रिया। पानी नौका अगर पानी के ऊपर चलती है तो क्या हो जाते हैं? पार हो जाती है। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए हमारे पराजय का मूल कारण है कर्मेंद्रिया। इसीलिए रोज सशक्त बन करके एक एक कर्मेंद्रिया कौन सी, इसलिए बाबा अमृत वाला भी अपना दरबार लगाते थे। अमृत वाला रोज अपना दरबार लगाऊं, कर्मेंद्रिय से बात करूं योग के बाद, हे मेरे कान, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, तुमको मैंने बॉर्डर पर रखा है, आज तुम्हें कुछ भी व्यर्थ नहीं सुनना, किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। हे आंखें, तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना। और उसके बाद फिर रात को समय चेक करूं, मैंने जो ऑर्डर की थी वैसे चले या मैं भी उसके वश हो गया हूं। और जब इसको मजबूत करेंगे तो माया जीत बनना इजी। माया के वश होने का मूल कारण है कर्म इंद्रियां। इसलिए बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो यहां स्वराज्य अधिकारी बनेगा उसके अंदर विजय प्राप्त करेगा। तो ये हमें 2020 में ये पुरुषार्थ करके इस 2020 में क्या करना है, कम समय में अधिक पुरुषार्थ करना है और जीत प्राप्त करनी है। इसलिए कौन सी बातें बताई, एक तो तपस्या के तरफ ध्यान, चाहे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग करना है, रात के सोने से पहले भी योग करके बाबा कहते सोना भी है, नुमा श्याम का योग भी, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें, जो बाबा ने नियम बना करके दिए उतना भी करेंगे अगर, और कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे तब हमारी। और वो योग में भी केवल बैठना नहीं, केवल नियम को पालन करने के लिए, लेकिन उस योग में भी हमारा मन कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ जाती है, उसकी भी चेकिंग करनी है। बुद्धि मेरी बाबा के तरफ गई या नहीं गई कैसे पता चलेगा। मैं अभी एक घंटा तो योग, आधा घंटा तो किया, लेकिन मेरा ध्यान बाबा के तरफ था या ध्यान कहीं और था, मन में विचार कहाँ चल रहे थे, विजन कौन सा चल रहा था, दृश्य क्या दिखाई पड़ रहा था। नहीं तो कई बार एक होता क्या है, आंखें तो देख रहे बाबा को, मन कहीं और, घर की बातें, किसने क्या बोला, क्या क्या हुआ, वो बातें दिखाई पड़ते। तो ध्यान और मन बाबा में नहीं, केवल आपका शरीर बैठा था मन बुद्धि। तो ऐसा योग करेंगे तो फिर अशरीर स्थिति नहीं होगी। ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो मेरा ध्यान कहाँ है, और वो ध्यान क्यों जाता है, क्योंकि सारा दिन कर्मों में हमारा ध्यान, कर्मयोगी की स्थिति नहीं होती। कर्मयोगी के बजाय हम केवल क्या कर रहे हैं, जो यहां कर्म करते समय जो देख रहे हैं उसी के बारे में केवल विचार है। इसलिए हमें कर्मयोगी बन करके करना है। इसलिए अगर योग हमारा ठीक ठाक है, अशरीर स्थिति है, तो हम विजयी बन सकेंगे। तो इसलिए इस वर्ष में हमें विजय बनना है। आज तक नहीं तो ऐसा नहीं, 19 की बातें 20 में लेके नहीं जाना। 19 में जो जो कुछ किसी के साथ बनती नहीं, किसी के कमजोरी दिखाई पड़ती है, कोई दोष दिखाई पड़ते, सब यहीं छोड़ करके ये 2020 में हमें अच्छी तरह क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, और बिल्कुल अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। तो हो सकता है ये 2020 का साल आपको आगे आने वाला एक सेकंड के पेपर में भी आपको पास कराएगा, क्योंकि आगे तो एक सेकंड का भी तो एक साल पुरुषार्थ करना है। तो आगे तो आय विनाश के समय, उस समय एक सेकंड का ही होगा, उसमें पास होना है। इसलिए हमें 2020 को अच्छी तरह पुरुषार्थ करके अच्छी तरह मनाना है। ठीक है, ओम शांति।